नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए ले चलती हूँ एक और नए सफ़र की तरफ, एक और कहानी की तरफ, जिसमें आज हम बात करेंगे जगत की रीत की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम महाराज जी के पास अपनी समस्या को लेकर चलें। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम पी नहीं सकते। बदबू आ रही है, मन भी नहीं होता पानी पीने को। संत ने पूछा, हुआ क्या, पानी क्यों पी नहीं सकते? लोग बोले, तीन कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए, बाहर नहीं निकले और मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हो उसका पानी कौन पिए महाराज जी? तो संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टियाँ छोड़ दी गया। फिर भी समस्या जड़ से जस से तस नहीं रही। लोग फिर से संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा करवाओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर संत के पास पहुँचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डला गया, नतीजा फिर वही, डाक के तीन पात। लोग फिर संत के पास, अब संत खुद चल कर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालात हैं, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत चीज़ें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए, अभी भी इनका मन कैसे नहीं बदला। तो संत ने पूछा कि तुमने और सब तो किया, वे तीन कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला है कि नहीं? लोग बोले, उनके लिए ना आपने कहा था ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही कथा दोस्तों हमारे जीवन की है। इस शरीर नामक गांव के अंत्यकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीन कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। इन्हीं की सारी बदबू है। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, थोड़ा यह कर लो, थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा पाठ करो, सब करते हैं, पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकाल कर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए ले चलती हूँ एक और कहानी की तरफ, एक और नए सफ़र की तरफ। आज बात करेंगे माँ बाप के प्यार की। माँ बाप किस तरह से करौंदा बनाते हैं और बच्चे क्या करते हैं, तो चलिए चलते हैं इस प्यार इसी कहानी की तरफ। एक बाप का फैसला। क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। ना अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे से बाहर सुन ली थी, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय समोसा सोनम को दे दी। सासू माँ बहू सोनम को चाय देने के पश्चात पति देव अशोक जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू सोनम ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान तैयार गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नज़ाकत हरकत को नज़रअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहाँ से चली गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उसकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ प्रभा जी अपने पति देव अशोक जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति देव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। प्रभा जी ने सारी उम्र तो उनके बच्चों के लिए लगा दी थी। कोटीनुमा घर अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहाँ पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और अशोक इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदा दिली शब्दों में कहते, पार्टनर रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ नहीं खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर पे टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू सोनम अपने पति नवीन को उनके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका ना छोड़ती। उसने उस कोने को बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें नवीन। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में, नवीन थोड़ा चिंतन स्वर में बोला। जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं, सोनम व्यंग्यात्मक स्वर में बोली। थोड़ी तमीज से बात करो, नवीन क्रोध से बोला, लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को पापा पिताजी के पास गया और बोला, पापा मैं और सोनम बड़ी एक गाड़ी खरीदना चाहते थे, पर बेटा एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी को खरीद कर रखेंगे कहाँ? अशोक जी का ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है यही गैराज बनवा लेंगे, वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा, वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमज़ोर कर रहे हैं। यह सुन प्रभा तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। अशोक जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करना करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा मम्मी से क्या पूछना, वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है, नवीन थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला। आप दोनों दिन भर इस जगह बेकार कुछ सोचे समझे चार लोगों के लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो है नहीं, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठा करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कि ये सब। और ये दन दनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट की जारी थी, अशोक की कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभा जी भी सन रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों को दिल में भर आया था और टूट भी चुके थे। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ जो थोड़ा सुकून से जूझ रहा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी, बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। अशोक जी आज पूरी रात बाहों में लगे रहे, कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे, लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा, प्रभा ने रुहान से लिहाजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक जी बोले। पर हद से ज़्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों में पानी देने भी नहीं निकली और ना ही किसी से बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टॉयलेट का बोर्ड टंगा देख नवीन के भौचक्के के स्वर के अशोक से प्रश्न किया, पापा माना कि घर बड़ा है, पर ये टॉयलेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिनिस्टर गुप्ता रिटायर्ड हो रहे हैं तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से उत्तर दिया। नवीन हैरान होकर बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोषण में, अशोक जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। अशोक एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहा था। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्गों तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, नवीन सिर झुका कर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी बड़ी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनाने का सबक दे दिया है। जब हम तुम दोनों को साथ देकर खुश हो सकते हैं तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया, ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई ना जाने कितनी मनोतियों के साक्षी हैं, तो ये अनोखा कोना छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए, नवीन के स्वर में नम्र हो चुके थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी से सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीव पहले आती है बाकि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़ों में अच्छे लगते हैं तो माँ बाप के साथ साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक बार मिली है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद।